Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 426.
سرور کائنات رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام پہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر عقل و ہوش مندی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے محمد یہ لوگ دیکھنے میں بھلے انسان ہیں مگر انہی میں اکثر یعنی زیادہ میجورٹی جانور جیسے ہیں. دکھنے میں سب انسان ہیں مطلب خدا تعالیٰ کا آدم کی طرف تھا. اور اس آیت کا ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے, آدمی بنتا ہے انسان, یعنی آدمی تو ہے ہی لیکن آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد, رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. مہندی کا جو درخت ہے اس کے پتے ہرے رنگ کے ہیں, گرین کلر کے ہیں, پھر اس کو سکھاتے ہیں, سکھانے کے بعد اس کا پاؤڈر بناتے ہیں, پاؤڈر بنانے کے بعد اس میں پانی ڈالتے ہیں, پھر وہ ہاتھوں پہ لگاتے ہیں تو رنگ آتا ہے. لیکن اگر ہم پتے ہرے ہوں یا سوکھے ہاتھوں پہ باندھنے سے رنگ نہیں آتا. آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد, یہاں ٹھوکر کا مطلب ٹریننگ ہے. दुख उठाना है, एक्सपीरियंस लेता है, तब जाके वो इंसान बनता है, उसको समझ आती है। और जब उसे समझ आती है तो राइट रॉन्ग का पता लगता है। मगर जो महज आदमी है, इंसान के दर्जे पे नहीं पहुंचा है, तो उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। जानवर खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, हम खाना पीना खा के सो जाते हैं, जानवर भी सो जाते हैं, हम आपस में लड़ते हैं, जानवर भी आपस में लड़ते हैं, हमारे अंदर खुद गर्जी है, जानवरों के अंदर बहुत खुद गर्जी है। वो तमाम आदतें जो इंसान के अंदर हैं, वो आदतें फरिश्तों की आदतों से मिली हुई हैं। मगर जो आदमी है इंसान के दर्जे पे नहीं है, तब वो फिर वो बिल्कुल जानवर जैसे हैं। आप अगर इंसान की हिस्ट्री पढ़ो, कम से कम हम 20 से 25,000 वर्ष की हिस्ट्री जान सकते हैं। किताबों की हिस्ट्री 10,000 वर्ष से ज्यादा नहीं जाती। लेकिन दूसरे इस किस्म के बहुत आसार हैं कि जिससे हम 20-25,000 वर्ष की ह्यूमन हिस्ट्री मालूम कर लेते हैं, और है आजकल। इस तमाम हिस्ट्री के अंदर हमें इस बात का पता चलता है कि किस एरिया में किस वक्त के अंदर आदमी की क्या हालत थी। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर सारी ह्यूमन हिस्ट्री का डार्केस्ट पीरियड वो था। डार्केस्ट पीरियड इसलिए कि हकीकत में इंसानियत कोई चीज थी ही नहीं। इल्म था नहीं, एजुकेशन थी नहीं, जहालियत थी। यहां तक जहालियत थी कि जानवरों की जिंदगी और इंसानों की जिंदगी लगभग ऐसी थी। अगर किसी शेरनी को फीमेल बच्चा पैदा हो गए, लायनस पैदा हो गए, या अगर किसी भेड़िए के घर के अंदर उसकी वाइफ को यानी फीमेल भेड़िया को अगर लड़की पैदा हो गए, तो उसको वो उसी प्यार से पालती है कि जिस प्यार से बच्चे दूसरे पाले जाते हैं। मगर रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर जो आदमी थे, वो लड़की पैदा होते ही उसी वक्त उसको जमीन खोद के दफन कर देते थे। यानी इससे जानवर अच्छे थे, कोई किस्म का लिहाज नहीं था अच्छाई और बुराई का। मगर वो लोग जो थे नबी के जमाने के अंदर जाहिल जो थे, उनके और जानवरों के दरमियान अगर मुकाबला करो तो जानवर बेहतर थे। क्योंकि जानवर को अगर मोहब्बत दी जाए तो जानवर मोहब्बत की कदर करता है, मगर आदमी नहीं। दगाबाजी, फरेब, धोखा, लूटमार, झूठ, हर किस्म की इंसानी जिंदगी के अंदर जितनी बुराइयां थीं या हैं, उस जमाने के लोगों में थी। और इनके अंदर खुदा ने कांटों में एक फूल पैदा किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी ने जब आंखें खोली तो जो मैंने आपके सामने कहा है तो वो थोड़ा कहा है, ऐसी बातें भी हैं कि जो मैंने कह ही नहीं सकता। इन हालात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत बीबी आमिना के पेट से पैदा हुए। बीबी आमिना कहती थी कि ये बच्चा ऐसा है कि मेरे पेट में मेरे से बातें करता था। पिसदर दिन ने रसूलुल्लाह की पैदाइश की खुशियों को इतने अच्छे स्वरूप में अपने गिनान में कहा है कि जिस दिन नबी मोहम्मद जन्मिया, खुदा ने 7 सरग के दरवाजे खोल दिए। 7 सरगना काई खुले, 6 द्वार काई खुले, 6 द्वार جس دن نبی محمد جنامیا نبی محمد جنامیا. اس سے زیادہ کیا تعریف ہوئے؟ کون پیدا ہوا؟ کوئی معمولی انسان نہیں, خاتم المرسلین, رحمت للعالمین, دنیا کے اندر ایک انسانی بدن لے کے آئے. خدا نے اپنی رحمت کو پرسونیفائی کیا, خدا نے اپنی رحمت کو انسانی پتلے میں پیدا دیا. اور رسول اکرم کے لیے خدا نے اپنے دو نام دیے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الرؤوف. الرؤوف کا مطلب ہے ترس کھانے والا, کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کو ترس آئے, مدد کرے, یہ خدا کا نام ہے. اور دوسرا نام خدا کا رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام اپنے محمد رسول اللہ کو دیے ہیں کہ جو رسول اللہ تمہارا رسول ہے وہ رؤوف رحیم ہے. اور حقیقت میں ہم جب رسول اللہ کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا میں ایسا انسان کبھی پیدا ہوا ہی نہیں. رحمت للعالمین یعنی صرف یہ جہان نہیں, لیکن خدا نے جتنی بھی کریشن خدا نے کی ہے یا کرنے والا ہے, اس سب کا اوپر رحم کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد کی امت میں ہیں. محمد نے ہمیں جانوروں میں سے انسان بنایا. یہ وہ زمانہ تھا دینداروں کہ لوگ پانچ پانچ سو ہزار ہزار آدمی مل کے مسافری کرتے تھے, پھر بھی ڈاکو ان کو رستے میں لوٹ لیتے تھے. ایک دن رسول اکرم فرمایا وہ زمانہ جلد آئے گا. نبوت ظاہر ہو چکی تھی, مدینے میں آ چکے تھے. نبی فرمایا وہ زمانہ جلدی آئے گا کہ ایک اکیلی عورت زیور پہن کے, اچھے کپڑے پہن کے, اونٹ پہ بیٹھ کے اکیلی مدینے سے حضر موت جائے, جو لگ بھگ 800-900 میل ہے. نبی فرمایا اس کو رستے میں کوئی تکلیف نہیں, اکیلی چلی جائے, کوئی بد نظری کرنے والا نہیں, کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں, کوئی لٹنے والا نہیں. اور رسول اکرم کی زندگی میں وہ وقت آ گیا کہ اکیلی عورت اگر 800 میل اکیلی اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جا رہی ہے, اسے کوئی خوف نہیں. یہ رسول اکرم کی تعلیم کا ذکر تھا. جانوروں کو ٹیم کر دیا, ظالموں کو ٹیم کر دیا. 14-15 سال کا لڑکا اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے یا گائیوں کا ہرڈ رکھا ہے, بھوک لگی ہے, چھری نکالی اور گائے کے یا بیل کے پچھلے پاؤں کے اوپر زور سے مار کے آدھا کلو ایک کلو کا گوشت نکال لیا اور کچا کھا رہا ہے. ارے تم اس بیل کو, اس گائے کا ایسا گوشت کاٹ لیا, وہ گر پڑ رہا ہے, کیا ظلم ہے. بے جان تو نہیں لیکن بے زبان ضرور ہے. یہ ہماری حالت تھی. اگر کسی نے کچھ وعدہ کیا تو کبھی برا نہیں ہوتا. ایسی حالت میں رسول اکرم پیدا ہوئے اور حضور نے اسلام کو ظاہر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 برس کے تھے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اور وہ زمانے کے اندر ہماری طرح یہ پاجامے اور چڈیاں نہیں تھیں. نبی کریم نے ایک دھوتی کی طرح, تیبل کی طرح کپڑا لوئن کلوتھ لپیٹ لیا تھا. وہ کھیل رہے تھے. میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس کی ڈیپتھ تک جا سکو گے تو آپ کانپ جاتے ہیں. کیوں کانپو گے؟ اس 3 برس کے رسول اکرم کی جو پاکیزگی تھی, پیوریٹی تھی, میں وہ سمجھنے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں. 3 برس کے نبی بچوں سے کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے کمر کی گانٹھ ڈھیلی ہو گئی, और तह बंद गिर गया, हुजूर नंगे हो गए, बेहोश हो गए। नंगे हो गए मगर बेहोश हो गए, आपको इतनी शर्म आई कि बेहोश हो गए। आप इसके दर्द पे जाओ, 3 बरस का बच्चा है लेकिन उसको इतनी शर्म आई कि बेहोश हो गया। क्या हमको कभी कभी अपनी शर्म के ऊपर बेहोशी आई? क्या हमको अपनी बेनकाबी के ऊपर कभी शर्म आई? इसके साथ मुझे इंसान की सारी हिस्ट्री के अंदर कोई वाकया नहीं मिलता कि मैं इसको कंपेयर कर सकूं। रसूल अकरम बेहोश हो गए, कैसा पाक पाकीजा प्योर इंसान था वो। ऐसी बहुत सी बातें हैं नबी अकरम की जिंदगी के अंदर। अफसोस यह है कि आमतौर पर छोटी सी किताबें हम ले लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन रसूल अकरम की जिंदगी के अंदर जाके आप अगर उनकी स्टेज देखो तो इंसान को बहुत कुछ जानना मिलता है। नबी करीम तहबंद खुलने से बेहोश हो गए, कितनी शर्म आई। अल्लाह के नामों में एक नाम है, अल्लाह के नामों में एक नाम है और वो नाम है सत्तार। सत्तार कहते हैं अपनी भूल भी, मगर मैं यहां कुछ और समझाना चाहता हूं। सत्तार का यूं मतलब यह है कि खुदा हमारे गुनाहों को, हमारी बेशर्मी को ढांक लेवे। लेकिन नहीं, इसके अंदर जो सटलिटी है वो और चीज है। सटलिटी यह है, यहां हमारी शर्म को ढांपने वाला है अस्सतार, है मौला मेरी लाज बचा ले। लेकिन हकीकत यह है, खुदा कहता है मैं बहुत शर्म वाला हूं। अल्लाह कहता है मैं बहुत शर्म वाला हूं, मैं हर हालत में रहम करूंगा, मुझे अपने बंदों को सजा देने में शर्म आती है। शर्म के बहुत दर्जे हैं। एक बुजुर्ग है, बाप है, दादा है, कोई आलिम शख्स है, उसके हुजूर में जो लोग बैठे हुए हैं वो उसकी शर्म रखते हैं। यहां शर्म से मतलब है अदब रखना। शर्म के बहुत तरीके हैं और शर्म के बड़े दर्जे हैं। वादा किया है, वादा तोड़ नहीं सकता, शर्म आती है। काहे की शर्म? वो कहेगा वादा तोड़ लिया, यानी अपनी किसी ऐब को लोगों पर जाहिर करने के लिए शर्म आती है। मैंने अगर वादा किया है और मैं पूरा नहीं करता तो मुझे शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? और कहेगा अबू अली, मेरे वादा किया पूरा नहीं किया, ये शर्म ईमान का भाव है। सिर्फ बदन की शर्म ही नहीं मगर अपनी जिंदगी के अंदर सारी चीजें शर्म के साथ वाबस्ता हैं। रसूल अकरम किसी के घर पे मेहमान थे, बड़ा सा थाला रखा गया, पिलाव पका था, लोग सामने बैठे थे 8-10 आदमी। अब जो होस्ट था, नेचुरली रसूल अकरम जैसा मेहमान उसके घर पे आवे कितनी खुशनसीबी, तो उसने अच्छी अच्छी बोटियां निकाल के नबी करीम के सामने रखी, थोड़ी थोड़ी बोटियां सबको दी। लेकिन जो अच्छा टुकड़ा था वो नबी के सामने था। रसूल अकरम खाना खा रहे थे, थोड़ी सी बातें कर रहे थे, अभी हुजूर के सामने गोश्त बहुत था, दूसरे लोग जल्दी से खा गए और गोश्त डेलिकेसी, बाजार में गोश्त मिलता नहीं था, उसके लिए खसूसी तौर पे आदमी बकरा के, ऊंट के, इस तरह से गाय वगैरह काटे। तो सामने एक आदमी बैठा था, नबी करीम मशहूर थे बातों में, तो उसने लंबा हाथ किया अक्रॉस और नबी के सामने से थोड़ी सी बोटियां खींच ली। नबी की निगाहें अमूमन नीची रहती थी, यह भी एक शर्म का तरीका है। टुक टुका आते सबको देखना बेशर्मों की बात है। शर्म का मतलब हर वो चीज के जो बदी से दूर रहवे या बदी करने से हट जावे, बदी करने के लिए तैयार न हो, ये भी शर्म है। यानी मैं आपको कह रहा था कि किसी बुजुर्ग के सामने उसकी इज्जत का देख के ख्याल करके हम लोग शर्म रखते हैं, अदब शर्म में आता है। मैं आपको एक पाठ सुनाऊं नबी मौला मुतज़ली का, आप जब गिनान पढ़े जाएं या बोले जाएं तो समझने की कोशिश करो। मौला के कलाम में एक पाठ है, शर्म ईमान की तिहाई है। शर्म ईमान का 1/3 भाग है। शर्म ईमान की तिहाई है, वफादारी तिहाई और सेकंड 3rd पार्ट क्या है? वफादारी। वफादारी फेथफुलनेस लॉयल्टी और तिहाई सखावत जानो। ये तीनों पे ईमान बैठा ठोर। 3 हिस्से हैं ईमान के, इन तीनों हिस्सों पे ईमान काबिल है। अगर 3 में से एक भी कमजोर हो गया तो ईमान कमजोर हो गया। शर्म, सेकेंड थिंग वफादारी, लॉयल्टी फेथफुलनेस, और तीसरी चीज सहावत। मैं तीनों को कवर नहीं करूंगा आज, मैं तो रसूल अकरम की जिंदगी के ऊपर बोल रहा हूं। अब हुजूर ने, उसने बोटियां खींच ली, हमारे जैसा तो वो होता तो क्या करता, आंखें निकाल रहे, तू अपना खा। मगेश रहमतुल्लाह आलमीन ने निगाहें नीची रखी और कहने लगे, घर का होस्ट जिस तरह खिलाता है ऐसा खाओ। उसकी तरफ अटैक नहीं किया। मैं आपको एक और मिसाल दूं। कुछ यार दोस्त बैठे हैं, लंबे पांव किए हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, यकायक उनका बाप या दादा या कोई बुजुर्ग आ गया तो वो क्या करेंगे? अपने पांव खींच लेंगे, ठीक ठाक होकर बैठ जाएंगे, गपशप बंद कर देंगे। क्या है ये? अदब। और अदब ये शर्म है। बुजुर्ग की इज्जत रखना भी शर्म है। अदब बहुत आला दर्जे की चीज है, और ये अदब है कि जो आदमी को इंसान बनाती है। शेख सादी एक गांव से निकले, कुछ लड़के खेल रहे थे, लेकिन एक लड़का दूर अकेला खड़ा था दरख्त के नीचे। और जब आप दरख्त ये लड़कों के पास से निकले, किसी ने उसका पिल्लू खींचा, किसी ने उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी। शेख सादी तो भागने लगे, उसके पीछे कुछ लड़के भागे, आखिर दूर चले गए। वो अकेला लड़का था, उसके पास गए। जब नजदीक गए तो वो लड़का अदब से सलाम किया, सलाम के जवाब मिला, कहते बेटे तेरे और इन लड़कों के दरमियान कैसा फर्क है? ये बेअदब बेतहाशा, और तू ऐसा कौन तुझे ये सिखाया? कहते हैं हजूर, इन लड़कों को देख के मैं सीखा कि इन लोगों के अंदर जो इनडिसिप्लिन है और कोई तरह का कंट्रोल नहीं और बजियां बुराइयां हैं, कोई जिंदगी के उसूल नहीं, मैं इनसे हट गया। रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी हमारे लिए एक सैंपल है, हर चीज के अंदर, हर शय के अंदर। आपके इखलाक की, यानी हुजूर के मैनर्स की एक बात करूं, मेरी वाजों में ऐसे जिक्र हैं, लेकिन याद आया तो नबी करीम की बात करूं। हुजूर मदीना में थे और दुश्मन तो बहुत थे, खसूसन यहूदी बहुत दुश्मन थे। मदीने के एक यहूदी ने अपने एक गुलाम को, जो ताइफ में रहता था, ताइफ मदीने से लगभग नीचे उतरो तो कुछ, मदीने से नहीं सॉरी मक्का से 40 माइल और मदीने से थोड़ा दूर था, 50 या 60 के करीब। تو وہ طائف کے غلام کو کہا اس نے کہ تم کسی طرح جا کے رسول اللہ کی مدینے میں جا کے بے عزتی کر کے آ، میں تجھے بہت بڑا انعام دوں گا. وہ آدمی آیا. نبی کریم کی مہمان نوازی تو سب کو پتا تھا، اور ویسے بھی عرب لوگوں میں اتنی بدیاں ہونے پر بھی مہمان نوازی تو تھی. شام کے وقت نبی کے گھر پہ آیا، کھٹکھٹایا، حضور اٹھے تو دیکھا، اس نے کہا السلام علیکم. السلام علیکم. کہتے محمد آپ کا نام ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے سنا کہ آپ بڑے مہمان نواز ہو، کیا مجھے رات ادھر بسر کرنے کے لیے اجازت ہے؟ تو بتاؤ. اندر اندر آیا، نبی نے اپنا بیڈ روم اس کو دیا. نبی کا جو پلنگ کیا تھا پتہ، تقریباً 5-6 inch موٹا چمڑے کا ایک گدیلا تھا، اور اس کے اندر کھجور کے پتوں اور گھاس سے بھرا ہوا تھا. حضور نے یہ چمڑے کا گدیلا جس پہ خود سویا کرتے تھے اس کو دیا، کھانا پینا دیا. وہ کہتے ہیں مجھے ابھی سو جانا ہے. تو بس دروازہ بند کیا، سو گئے. صبح ہوئی، رسول پاک مسجد میں گئے. صبح آئے واپس، کافی دیر تک انتظار کیا، ناشتہ تیار ہوا. حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے مہمان آؤ، اٹھو، ناشتہ تیار ہے. بہت دیر تک کھٹکھٹایا، بہت دیر ہو گئی، اندر سے کوئی نہ نکلا. حضور نے کہا میں ابھی اندر آتا ہوں، میں اندر آتا ہوں، میں اندر آتا ہوں. 3 دفعہ آواز لگائی. اب جو دروازہ کھولا تو بدبو سے حضور نے منہ پھیلا لیا. وہ لعین لعنتی نبی کے اس گدیلے کے اوپر اپنی رفع حاجت کر کے، پیٹ کو خالی کر کے، گند کر کے بھاگ گیا. رحمت اللہ علیہ کہ جبریل اور فرشتے اس کے قدموں میں سر رکھیں. جس کے دور سے خدا تعالیٰ کی ساری خدائی پیدا ہوئی ہے، اپنے دست مبارک سے اس گدیلے کو باہر کھینچا، پانی سے اس کو صاف کیا، کافی دیر دروازے کھلے رہے، تھوڑا لوبان کیا، ادھر ادھر دیکھا تو اس کی تلوار لٹکی ہوئی تھی. تلوار لیا، اس کا نام لکھا تھا اور طائف گاؤں کا نام لکھا تھا. حضور نے اونٹ منگایا اور اس پہ بیٹھ کے طائف گئے. طائف جا کے کسی کو پوچھا، بھائی فلاں نام کا آدمی؟ کہتے ہاں وہ مکان ہے اس کا. آپ گئے، ادھر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے نکلا اور نبی کو دیکھ کے زمین میں بیٹھ گیا، اتنا شرمندہ ہوا. حضور رسول اکرم کہنے لگے، اے مہمان، میں نے تیرے لیے ناشتہ بنایا اور تو نے ناشتہ کیے بغیر، مجھے کہے بغیر سفر کر لیا. یہ تلوار تم بھول گئے تھے، میں دینے آیا، مجھے تلوار دی. حضور پلٹ گئے. ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو پہلے تو گردن پکڑتا، مارتا پیٹتا، گالیاں دیتا، شاید مار بھی ڈالتا. اور نبی نے ایک لفظ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیا. کہنے لگے، میں نے تیرے لیے ناشتہ بنایا تھا، ناشتہ کھائے بغیر، مجھے کہے بغیر چلے، تلوار بھول گئے، تلوار چلا. وہ پیچھے دوڑا، نبی کے پاؤں پہ سر رگڑنے لگا، بہت معافی مانگی، مسلمان ہو گیا. کہنے لگا، میرے آقا نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا تھا، حضور مجھے بخش دو، میں مسلمان بنتا. یہ تھے نبی کے اخلاق. حضرت امام بہت دفعہ اپنی تعلیق کا مبارک اور فرمانوں میں کہتے ہیں ایتھکس آف اسلام. ایتھکس کا مطلب اخلاق، کیریکٹر، بیہیویئر، مینرز. جانور میں اور اگر انسان میں دونوں میں مینرز نہ ہوئے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ادب، عشمت، رسپیکٹ، بیہیویئر، مینرز، گڈ مینرز. رسول اکرم کی زندگی بھری ہوئی ہے ہمارے لیے ان بہت سی سیمپل کی چیزوں سے. مجھے سینکڑوں چیزیں یاد ہیں، الحمدللہ. میں بولتا رہوں تو 3 گھنٹے مجھے پورے نہیں ہوئے. میں آپ کے ساتھ میں اس کی اتنی باتیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے تھوڑے سیمپل اس لیے دیے کہ ہمیں پتہ لگے کہ رسول کون تھے. जब कुछ नहीं था, चांद सूरज आसमान जमीन कोई खुदा की मखलूकात क्रिएशन नहीं थी, उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने बरस पहले थे। खुदा ताला ने अपने नूर में से मोहम्मद के नूर को जुदा किया और उसका नाम रखा मोहम्मद। यह कैसा था कि एक मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती के साथ लगाओ तो यह भी जल उठती है। अल्लाह ने अपने नूर में से मोहम्मद के नूर को जुदा किया और खुद अली बना। अली, हम जो जानते हैं इस्माइली नूरानी दर्जात की बातें या नूरानी एस्पेक्ट, हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ नूर जो है वो दूसरे नहीं जानते हैं, क्योंकि नूर का उन्हें पता नहीं और हमारे अंदर नूर है, मौजूद है। अली मोहम्मद यक खुदा हक्शनासी दफे वाला, और खुदा ने जब मोहम्मद के नूर को अपने नूर से जुदा किया तो उसके नूर में से सबसे पहले फरिश्ते बनाए। फरिश्तों की पैदाइश नूर की पैदाइश है, हम आदमी हैं मिट्टी की पैदाइश है। जिन्नात को खुदा ने आग में से पैदा किया और हवा के अंदर से बैक्टीरियाज और पंछी यानी परिंदे पैदा किए। पानी में से मछलियां और पानी की मखलूकात पैदा की खुदा ने। तो फरिश्ते नूरी हैं, सबसे पहले मोहम्मद के नूर से फरिश्ते पैदा हुए। उहद की लड़ाई थी, इस लड़ाई में मुसलमान पहले जीत गए बाद में हार गए और काफिरों ने बहुत मुसलमान मार डाले धोखे से, क्योंकि इसमें मुसलमानों की भूल थी, नबी का हुक्म नहीं माना, इसमें नबी के दो दांत भी टूट गए। दुश्मनों ने मोहम्मद को अकेला समझ के खूब हलमत हमला किया, लेकिन मुर्तजा ने इसको हर हालत में बचाते रहे। काफिर भाग गए, जिब्रील अमीन नीचे आए, कहने लगे या मोहम्मद, अली की बहादुरी देख के मैं नीचे आया हूं अली को सलाम करने। रसूल कहते हैं, ए जिब्रील, मैं अली में से हूं, अली मेरे में से है। अली मिन्नी व अना मिन अली, मैं अली में से हूं, अली मेरे में से है। इस स्टेटमेंट के अंदर इस्माइली मजहब की बुनियाद है और यह बुनियाद एक घंटे की टीचिंग के लिए काफी नहीं। मैं आपको 17 चीजें जरूर बोल रहा हूं, लेकिन अंदर अंदर इतनी चीजें हैं कि हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। टीवी में से, मौज शौक में से टाइम बचे तो हम अपना मजहब सीखें। जिब्रील ने क्या कहा, कहते या नबी, मैं आप दोनों में से हूं, मैं आप दोनों में से हूं, यानी अली और नबी का जो नूर है उसी को हम अल्लाह कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह किसी बदन का नाम नहीं, अल्लाह का बदन नहीं, और हम अल्लाह का तहिया कर भी लेवे तो भी समझना बहुत मुश्किल है। सिर्फ खुदा अपनी मर्जी से किसी को अपनी मारिफत दे रहे तो ठीक है। तो नबी करीम के नूर से सारी खलकत पैदा की गई। हर नबी के अंदर 124,000 नबी थे, हर नबी के अंदर मोहम्मद का नूर था। ऐसा मत समझना कि मोहम्मद 1400 बरस पहले पैदा हुए, ये तो बदन पैदा हुआ, लेकिन उसका नूर लाखों बरसों से चला आता था। दुनिया के अंदर आके बदन लेके हुजूर ने इंसान को इंसानियत सिखाई, जानवरों की जैसी जबलत में से उनको इंसानी और फरिश्ता के दर्जे तक पहुंचने के लिए उनको तालीम दी। आज उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलूद मना रहे हैं, यानी उनकी पैदाइश का दिन मना रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल रसूल अकरम ने दुनिया के अंदर जन्म लिया और उन्होंने इस्लाम दीन को जाहिर करके, मुकम्मल करके, हमारे सामने कयामत तक का रास्ता खोल दिया, रास्ता आसान कर दिया। उनकी जिंदगी के वाकयात पढ़ के हमें अपनी जिंदगी को बनाना है। झूठ, गुनाह, बदनजरी, बेईमानी, बददयानती, ऐसी तमाम बदियां बुराइयां जो आदमियों के अंदर मौजूद हैं बेइल्मी की वजह से, उनको दूर करके हम अपने दिल को साफ और पाक प्योर करके अपनी मंजिल पे पहुंचे। याद रखो दीनदारो, आज इस वक्त हम यहां 25-50 जितने भी आदमी बैठे हैं, 100 बरस के बाद तो क्या, शायद 50 बरस के बाद भी मुश्किल से कोई जीता होगा। हम सब मर जाएंगे और सबको मरना है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जो काफर है खुदा को नहीं मानता, वो भी मौत को मानता है, और मौत का कोई भरोसा नहीं। लाजिम नहीं कि बूढ़ा होकर आदमी मरे, बच्चे भी मर जाते हैं, मां के पेट में भी मर जाते हैं। मौत हक है और हमें मरना है, और खुदा हमसे हिसाब मांगेगा। हमारे ऊपर जो खुदा ताला ने फराइज रखे हैं, ड्यूटियां रखी हैं, हमने कहां तक पूरी की हैं? हम सब ने हजरत इमाम की बैत की है ना, और हम अपनी इस बैत को रिवाइव करते हैं हर रोज मुखी कमड़िया के हाथ में अपना नजराना देख के। हम कहते हैं तोबो तोबो बंदो गुनेगार, गत बख्शे शाहपीर बख्शे। शाहपीर की बख्शामनी मुखी के थ्रू से हम मांगते हैं, मगर हम रोज करते हैं, समझते नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं। हमारी जिंदगी हजरत इमाम के फरमान के तहत है। तन मन धन हमने अपने मुर्शिद को दे रखा है, हमें अच्छा बनना चाहिए, प्योर बनना चाहिए, पाक बनना चाहिए, फरिश्तों जैसा बनना चाहिए। हमारी बदियां बुराइयां अगर नहीं गई तो सुल्तान शाहदार फरमाते हैं, मुर्गी सारा दिन सिर टपकती है, अगर इसको सजदा करते हो तो तुम्हारे में और मुर्गी में कोई फर्क नहीं। मजहब समझ के ऊपर है। रसूल अकरम की जिंदगी में से हम अच्छाइयां ढूंढते हैं, और उनकी सारी जिंदगी अच्छाइयों से भरी हुई है। ए दिनदारो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्बीह निकाला करो, और वो क्या है? सलवात। मोहम्मद और उसकी आल के ऊपर हम सुदूर पर सलवात पढ़ते हैं। हर इस्माइली का फर्ज है कि कम से कम 3 तस्बीहां सलवात की रोज पढ़ा करो। आपको बहुत बरकत होगी, आपके बहुत से काम दुरुस्त हो जाएंगे, बहुत सी आफतें बलाएं दूर हो जाएंगी। सलवात की 3 तस्बीहां निकालने से आपकी नेक उम्मीदों में कामयाबी मिलती है। 3 तस्बीहां, 3 तस्बीह 11 दाने की नहीं, 101 दाने की हमारी जो तस्बीह है, ये इस्माइली तस्बीह है। रोज उसको याद करो और सारी दुनिया के लिए भलाई की दुआएं मांगो, सुखी और आबाद बनोगे। मौला आपके दिलों को अपने नूर से रोशन करे, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरियां करे, हर किस्म की बदी बुराई से बचावे, गुनाहों से बचावे, शैतान के असर से बचावे। मौलाना हजरत इमाम अपनी पनाह में, छत्र छाया में रखे। मौला दुश्मन आपके दूर करे, बलाएं आफतें दूर करे। मौला आपकी बीमारियां दूर करे, आपकी कमजोरियां खामियां दूर करे। मौला आपको, आपकी आल औलाद को सुखी आबाद रखे, बरकतें देवे, नवाजिशें देवे, बख्शिशें देवे। मौला अपने नूर की बख्शिशें देवे, दिनों दुनिया की नियामतें देवे, और मौत का वक्त अपनी मोहब्बत में निकाले। ऐसा